शांति। आज की तारीख है 1/1/18 और आज का क्लास का विषय है बधाई और विदाई। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये है समाप्ति का वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और सर्व को जगाने का वर्ष जो हम सभी बच्चों ने बाप दादा के मुख से सुना। तो हम आज इसी बात पर सोचेंगे और साथ साथ जो बाप दादा ने होमवर्क दिया पास शब्द के साथ उस पर भी थोड़ा सोचेंगे। बाबा से पूछा गया इस वर्ष को क्या नाम दिया जाए। बाबा ने तुरंत कहा समाप्ति। दुनिया में सभी खूब कल रात्रि को पुराने वर्ष को विदाई देने और नए वर्ष के आगमन के लिए बधाई देने के लिए खूब सभी ने एक दो को ग्रीटिंग्स दिया होगा। खूब सभी आपस में मिलन मनाते होंगे, मनाया। खूब सभी ने गीत गाए होंगे और गीत के ऊपर नए वर्ष के लिए खूब नाच करके झूमे भी होंगे। कईयों ने नशा भी किया होगा और उस नशे के साथ नाच कर झूम कर गा कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करके और जो परंपरा से रसम चली आई है उस रसम को रात्रि को सभी ने विशेष 12 बजे से लेकर के जितना जो कर सके करते गए हो। परंतु हम इस बात पर सोचे कि हमारी रस्में अलग हैं, हमारी आने वाली नई दुनिया उसकी रस्में भी अलग होंगी और जो पुरानी दुनिया ने नए वर्ष को मनाने की और पुराने वर्ष को विदाई देने की जो रस्म निभाई उसमें कहां तक व्यवहारिकता थी, कहां तक वो व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल कहां तक वह सत्य था। जो भी मनाया गया सब एक रस्म थी, कोरी रस्म, बिना भावनाओं की और औपचारिकता कि नया वर्ष आया है तो हर वर्ष की तरह हमें उसको विदाई देनी है और नए वर्ष को मनाना है। हाँ, हो सकता है कि कोई कोई ने नए वर्ष के लिए कोई नया संकल्प भी लिया होगा, परंतु उस नए संकल्प को लेने के पश्चात, जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रीत करना सहज है। सहज इसलिए कहा जाता है कि प्रीत कभी की नहीं जाती, वो हो जाती है। और जो चीज नेचुरल होती है वो सहज होती है, वो सरल होती है। तो दुनिया ने जो वर्ष मनाया वो औपचारिक बन करके रह गया या रह जाता है, क्योंकि वो एक कोरी रस्म निभाते हैं। लेकिन हम बच्चों से जिन रस्मों की शुरुआत होती है, जिस रस्मों की शुरुआत करके हम बच्चे खुशी में नाचते हैं, गाते हैं और बाबा की याद में बाबा को शुक्रिया करते हुए अपनी रस्म को हम निभाते हैं, हम सिर्फ बाबा से प्रीत नहीं करते, हम जो भी मनाते हैं, चाहे त्योहार मनाते हैं, चाहे हम अपना अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं, चाहे लौकिक जन्मदिन भी मनाते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ज्ञान की बातें समाई हुई होती है, समझदारी समाई हुई होती है, और उस समझदारी के साथ साथ कई गुह्य राज भी उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो हमारे मनाने में और उनके मनाने में रात और दिन का फर्क होता है। हम सिर्फ मनाना नहीं जानते, करना नहीं जानते, परंतु प्रैक्टिकल में हम उसको निभाना भी जानते हैं, क्योंकि हमें सिखलाने वाला कौन है, हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें योग सिखलाने वाला कौन। बस यह स्मृति ही नशे के लिए काफी है। अब जितना जितना हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी हमें पढ़ाया है, सिखाया है, ज्ञान के गुह्य राजों को समझाया है, यहां तक कि सच्ची प्रीत करना भी सिखलाया, सच्चा सर्व से रूहानी स्नेह करना भी सिखलाया, तो हम बच्चे जानते हैं कि मनाना क्या होता है, किस प्रकार होता है और उस मनाने से फायदे क्या होते हैं। अब इस बात पर सोचें हम कि हम भी नए वर्ष के लिए नया संकल्प लेते हैं, बाप दादा से पूछते हैं कि हम इस वर्ष क्या करें, यानी पुरुषार्थ क्या करें, सेवा क्या करें, या जो भी हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं वो हम क्या करें, या हमें जो जगाने का कार्य है वो हम क्या करें, या नई दुनिया के लिए हमारे कदमों को हम और तेज कदम करने के लिए क्या करें। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया, परंतु ये बताने से पूर्व एक ही शब्द बाबा ने इतना सुंदर गुह्यता से भरपूर बोल दिया कि इस वर्ष को कौन सा वर्ष कहेंगे, समाप्ति। वैसे अपने विश्वविद्यालय ने इस वर्ष को तपस्या वर्ष घोषित किया है और ड्रामा अनुसार बाबा ने भी समाप्ति कह करके और तपस्या को और गहरा गुह्य राज भरा बना दिया, क्योंकि जब तक हमने पुरानी बातों को विदाई दे करके समाप्त नहीं किया है, सिर्फ विदाई नहीं देनी है, हम तो कई बार विदाई दे चुके हैं, कई बातों के हम विदाई दे चुके हैं और कई प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा और जन सेवा के लिए हम संकल्प कर चुके हैं, शुभ भावनाएं रख चुके हैं, शुभ कामनाएं कर चुके हैं और कई प्रकार की छोटी बड़ी प्रतिज्ञाएं हम नए वर्ष में स्वयं के साथ भी कर चुके हैं और बाबा के साथ भी कर चुके हैं। आप सभी ने भी आज अमृत वेले मैंने देखा कई रात्रि को 12 बजे तपस्या धाम में जाकर के और बाप दादा को जाकर के नए वर्ष की बधाई दी और स्वयं में एक संकल्प अवश्य लिया होगा कि हम इस वर्ष ये करेंगे और ये छोड़ेंगे। आप सभी ने भी ऐसा किया होगा, भले रात्रि को तपस्या धाम में नहीं गए होंगे परंतु अमृत वेले तो अवश्य ही हरेक ने कोई ना कोई ऐसा संकल्प तो छोड़ने का और धारण करने का अवश्य लिया होगा। जिन्होंने ये किया कृपया वो हाथ उठाएंगे। देखो मेजोरिटी सभी ने हाथ उठाया, तो हम प्रतिवर्ष की तरह हम भी एक रस्म निभा करके तो आए। हाँ, हो सकता है कई बाबा के बच्चे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ता के साथ प्रैक्टिकल में मन वचन कर्म से चल करके पुरुषार्थ किया और करते होंगे और वो विजयी भी हुए होंगे, सफल भी हुए होंगे और अभी भी इसी आशा में इसी स्वयं के प्रति शुभेच्छा रखते हुए, औरों के प्रति तो रखे ही परंतु उन सबसे पहले बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इस आत्मा का यह जो शरीर रूपी घर है, पहले तो हम स्वयं के लिए कोई ना कोई शुभ भावना शुभ कामना शुभ संकल्प या प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने दिल पर हाथ रख के पूछेंगे, बाबा ने भी कहा अपने से पूछो कि हम जो संकल्प करते हैं क्या हम उस संकल्प पर वर्ष के अंतिम दिन की अंतिम घड़ी तक उस संकल्प को हम निभा पाते हैं, निभाते हैं? जो निभाते हैं उनको बधाई है, परंतु हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया तो अपने को धोखा देती ही है और प्रभु के आगे प्रतिज्ञा करके मुकर जाते हैं। ठीक वैसे ही हम बच्चों के अंदर भी मेजोरिटी यही बात होती है कि हम संकल्प तो गुजराती में कहते हैं आरंभे शुरा, जब कोई बात नई शुरू करनी होती है तभी हम शुरवीर बन करके संकल्प भी करते, दृढ़ता भी लाते और अपने अंदर इतना हिम्मत विश्वास रखते कि हम यह करके ही छोड़ेंगे। लेकिन जो स्वयं को नहीं पहचानते वो विजयी कैसे हो सकते हैं? कैसे स्वयं को नहीं पहचानते कि हम प्रारंभ में शूरवीर हैं परंतु बाद में धीरे 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 हमें अपना संकल्प भी शायद भूल जाता है, प्रतिज्ञा भी भूल जाती है। तब तो बाबा को बार बार हम बच्चों को मुरलियों के अंदर याद दिलाना पड़ता है कि भक्ति मार्ग में तुमने क्या क्या वायदे किए, बाबा का बनने के बाद तुमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की, क्या क्या वायदे किए। बाबा क्यों ये रिमाइंड कराते? ताकि हम बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और जब लक्ष्य सदैव हमारी नजरों के आगे हो तो लक्षण भी हमारे साथ साथ कदम मिलाते हुए चलेंगे। लेकिन लक्ष्य अगर खिसकता है, लक्ष्य कुछ समय के लिए भूलता है, कभी याद आता है कभी भूलता है, तो लक्षणों में भी यही बात होती है। फिर लक्षण भी कभी तो आ जाते हैं, कभी लक्षण हमारे विपरीत हो जाते हैं, हमारे विरोधी हो जाते हैं। और तब हम जो सफलता को देखना चाहते हैं वो सफलता हम नहीं देख पाते और हम असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को ही धोखा दे दिया, स्वयं को ही नहीं पहचाना कि मैंने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने तक मुझे वह स्मृति में रहेगा या नहीं रहेगा, नशा मुझे उसका चढ़ा हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। हमने उमंग में आकर, उत्साह में आकर, जैसे उमंग उत्साह से नए वर्ष को मनाते हैं और कह देते हैं पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं और नए वर्ष का आगमन हम स्वीकार कर रहे हैं, परंतु अपने से पूछें क्या सचमुच हमने विदाई दे दी? अब प्रश्न आता है किसको विदाई दे? थोड़ा आप लोग भी सोचना, आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी। हमें अपने स्वभाव के अंदर अनेक ऐसी बातें हैं जो न चाहते भी बार बार हमारे पास वो आ जाती हैं। हमारे संस्कारों में भी कई बातें ऐसी हैं जो न चाहते भी वो बार बार हमारे ऊपर हमला बुलाती हैं, हमारे से युद्ध करने आ जाती हैं, हमें पराजित करती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी चलन, चेहरा, हमारी एक्टिविटी जो भी होती है वह भी हम देखें तो बार बार हमें उस चलन के ऊपर ध्यान रखने के बावजूद, मीठे मीठे बाप दादा के इशारे मिलने के बावजूद, मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्यों को सुनने के बावजूद, प्रतिज्ञाएं लिखवाने के बावजूद, निमित्त टीचर्स बहनों के द्वारा मुरलियों को पढ़ करके या क्लासेस करा करके ध्यान खींचवाने के बावजूद भी हम उसमें पराजित रहते हैं, हमारी विजय नहीं होती। मैं बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ की बातें नहीं करूंगी कि तपस्या वर्ष है तो हमको 8 घंटा योग करना चाहिए, हमको एकांत में जाकर, हाँ ये सब करना है, परंतु हम सोचे 8 घंटा और हम कर भी ना पाए एक घंटा, इससे तो अच्छा ये है कि हम उतना ही सोचें जितना हम प्रैक्टिकल अभी तक सारे दिन में करते आते हैं। तो हम अपना वर्ष का चार्ट देखें कि क्या सारे वर्ष में मैंने कभी 8 घंटा योग किया है, और कितना परसेंटेज किया। अगर पासिंग परसेंटेज भी मैंने 8 घंटा तो क्या 7, 6, 5, 4 घंटा भी नहीं किया, और यदि किया तो गिनती के यादगार दिन पर ही हुआ, उसकी यादगारें मेरे पास बनी, उतना ही किया। जब अभ्यास ही नहीं डाला तो क्या आज हम तपस्या वर्ष के लिए ये बड़ी भारी बात सोचें कि हम 8 घंटा योग करेंगे, क्या ये शक्य है? बिना अभ्यास के किसी भी पुरुषार्थ में सफलता को पाना पॉसिबल है? जो समझते हैं पॉसिबल है वो हाथ उठाए। अल्पकाल के लिए नहीं, एक दिन तो सब कोई कर लेगा। आपको भट्टी में बिठाया जाएगा, आप छुट्टी लेकर आते हैं, आप अपने ऑफिस वर्क के, घर के वर्क कामों से आप टोटली फ्री होकर के आके बैठते हैं, वो वातावरण में आप मुक्त हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना खाना बनाने का टेंशन, ना खाना खाने का टेंशन, हर बात आप टेंशन फ्री हो, और तब आपको अनेक साथ सहारा मिलता है, साधनों का सहारा मिलता है, आपको योग में बैठते हो आपको कमेंट्री का सहारा मिलता है, आपको वातावरण का सहारा मिलता है, आपको संगठन का सहारा मिलता है, आपको एक साथियों का सहारा मिलता है। तो ये सब उस दिन के लिए करना बड़ा सहज हो जाता है, परंतु क्या ये 8 घंटे की तपस्या की जर्नी, याद की यात्रा की रोज शक्य है? जो समझते हैं शक्य है वो हाथ उठाए। कोई नहीं, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल बच्चे हैं। बाबा ने हमें प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। यहां जितने भी बच्चे बैठे सभी ने सच बोला, और यही कारण है कि बाप दादा हम सभी बच्चों पर सदा राजी रहता है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, सच्चे अधूरा पूरा करो, आप सच्चे सच्चे दिल पर कौन राजी, कौन है हमारा साहेब, बाबा। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी। अच्छा, मजे की बात देखो, जिस दिन आपका एक आधा घंटा भी योग अच्छा लगता है, आपको अंदर में अतीन्द्रिय सुख भी भासता है, आपको कोई संकल्प नहीं चले, कोई नेगेटिविटी नहीं चली, और बहुत अच्छा आपको अनुभव भी आया, ऐसे लगा जैसे आप बाप दादा के संग हैं, साथ हैं, बाप दादा से बातें कर रहे हैं, आप वतन में हैं, बाबा आपके सन्मुख है, उस दिन आपको कितनी खुशी होती है? इतनी खुशी होती है कि खुशी में आकर के कई तो खगियां मारते हैं, खुशी से आकर के समाचार भी सुनाते हैं, और उस समय ऐसा लगता है उनको देखकर, और वो खुद भी समझते हैं कि बस जो चाहिए था वो सब मिल गया। जैसे खुशी जैसी खुराक नहीं, तो वो जो कहावत है उसका प्रैक्टिकल अनुभव एक आधा घंटे के अंदर हो जाता है। आधा घंटा तो छोड़ो, लेकिन जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं, अभी रस्म बदली है समय के अनुरूप, लेकिन जब हम बाप दादा से, शुरू शुरू में तो सभी पर्सनल मिलते थे, पर्सनल बातें होती थी, पर्सनल वरदान मिलता था, फिर धीरे धीरे परिवार मिलने लगा, फिर धीरे धीरे सेवा केंद्र पर आने वाले कुमार कुमारी युगल अधर कुमार अधर कुमारी ऐसे ग्रुप में मिलने लगे, फिर एक सेंटर मिलने लगा, फिर धीरे धीरे सब जोन मिलने लगा, फिर जोन मिलने लगा, फिर उसके पश्चात क्या समय ने दिखाया, पूरा जोन उठे और अब की बार तो सभी उठे, सभी को एक साथ बाबा ने दृष्टि दी। तो समय का परिवर्तन हम सभी देख रहे हैं और स्वयं का भी परिवर्तन हम देख रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रखकर अपने परिवर्तन के विषय में अपनी जर्नी देखना, अपनी यात्रा का पिक्चर देखना, जो खुशी आपको 15-20 वर्ष पहले थी, जो नशा आपको 15-20 वर्ष पहले था, जो सेवा आप उछल उछल करके 15-20 वर्ष पहले करते थे, जो आपको परिवार के प्रति यानी ईश्वरीय परिवार के प्रति जो एक रूहानी स्नेह छलकता था, ये जो भी बातें हमारे ईश्वरीय परिवार से संबंधित, बाबा से संबंधित जितनी भी बातें हैं, क्या वो वैसी की वैसी है? मैं घड़ी घड़ी हाथ उठवाकर आपकी इज्जत कहूं, बेइज्जती कहूं, नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरी इज्जत है, परंतु मेजोरिटी देखा गया है कि नशे में रहने वाली आत्माएं कितनी, और जो आरंभ में जब बाबा के बच्चे बने, जो हम कहते हम नए नए आए, तब की हमारी जो स्थिति और अब की हमारी जो स्थिति है, उसमें इतना अंतर क्यों पड़ा, कारण क्या? हम किसी को दोष नहीं दे सकते, जबकि बाबा माया को भी दोष नहीं देना चाहते। आपने कई बार मुरली में सुना होगा कि माया का कोई दोष नहीं। हम बच्चे माया को दोष देकर और बाबा को अर्जी करते हैं अमृत वेले कि बाबा ये माया मुझे बड़ी परेशान करती है, फिर वो व्यर्थ संकल्प हो, हिसाब किताब हो, कर्म भोग हो, जो कुछ भी हो, इसलिए बाबा इस माया को अभी मेरे पास मत भेजना। क्या आपकी सुनता है बाबा? बाबा क्या जवाब देते हैं बताओ? बाबा कहता है, जो बच्चे ऐसे कहते हैं तो मैं माया को कहता हूं, क्या कहता हूं, कि इसके पास जाओ, मैं उसको आज्ञा करता हूं, ऑर्डर करता हूं कि तुम इसके पास जाओ। तो माया और आती है सामने, और जब माया सामने आती है बार बार हम परेशान हो जाते हैं, अपनी स्वमान की शान से हम नीचे आ जाते हैं, फरियाद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, हमारा चेहरा उतर जाता है, हमारा मूड आउट हो जाता है। कितनी हमारी स्थितियों के अंदर परिवर्तन आता है, आता है ना? और वो परिवर्तन जो माया के विघ्न के कारण या फिर हम अपनी कमजोरी के कारण, कौन सी कमजोरी, बाबा को प्रेम से याद नहीं करते, दिल से, बाबा कहते हैं ना दिल से मुझे याद करो या दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा आपके पास है, आपके साथ है, आपके समीप है। बाबा ने कल कहा पास शब्द के कई और भी अर्थ है, तो हम बाबा के पास रहना चाहते हैं, बाबा को पास में रखना चाहते हैं, हम बाबा के पास जाना चाहते हैं, और हम बाबा को पास रखकर, बाबा को पास बुलाकर, बाबा को साथ रखकर हम क्या करना चाहते हैं, पास हो जाना चाहते हैं। परीक्षा में जैसे पास होते हैं, विजयी होते हैं, हम विजयी होना चाहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमको किसी को पास करना है। जब हम किसको पास करेंगे तब हम बाबा के पास जा सकेंगे। तो किसको पास करना है, माया को पास करके निकलना है। लेकिन जैसे बाबा ने कहा अभी और अटेंशन दो, कल बाबा ने कहा ना और अटेंशन की जरूरत है, तो हम और अटेंशन दे, क्योंकि माया देखती है कि ये जा रहे हैं बाबा के पास, तो वो हमारे रास्ते के बीच में फिर से विघ्न बन के आ जाती है और हम उसको पास नहीं कर पाते। और यही कारण है हमारी पढ़ाई अब तक जारी है। अब इस पढ़ाई की समाप्ति कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं नई दुनिया पास तब आएगी जब तुम बच्चे कर्मातीत स्थिति में पास होंगे। तो कर्मातीत स्थिति हमारी कब बनेगी, बाबा कहते हैं अशरीरी भव। जितना हम अशरीरी रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे, उतना हम बाबा के समीप आएंगे। परंतु मुसीबत वहीं पर है कि हम अशरीरी हो नहीं पाते। अशरीरी होने में छोटे छोटे विघ्नों की मैं बातें बताऊंगी आपको। जैसे मैंने कहा 8 घंटा योगाभ्यास नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमें प्रयत्न नहीं करना है, कि भाई हमको कहा गया कि नहीं 8 घंटा तो कोई योगाभ्यास कर ही नहीं सकता प्रैक्टिकल। नहीं, हमें 200 नाखूनों का जोर देकर जितना हम कर सकें हमें अवश्य करना है, और बाबा हमें अवश्य उसमें मदद भी करेंगे। परंतु पहले हम छोटे छोटे अभ्यास जिसमें हम असफल होते हैं, कौन से छोटे छोटे अभ्यास, हम अमृत वेले अभी उठ करके रेगुलर कर नहीं पाते, और अगर हम रेगुलर उठते हैं तो नेमीनाथ की तरह हम बाप दादा के सन्मुख आके बैठ जाते हैं। क्यों मैं कहती हूं कि हम अमृत वेले भी ये अभ्यास पक्का नहीं कर पाए, क्योंकि हम दिल से बाबा के साथ रू रिहान नहीं कर पाते, हम शक्तियां ले नहीं पाते। लेकिन उस समय भी माया हमें सवेरे सवेरे अमृत वेले भी वो छोड़ती नहीं। आप सभी अनुभवी बैठे हैं, अरे उन अमृत वेले का योग तो छोड़ो, लेकिन ये जो 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल है ना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए शायद ब्राह्मणों ने ये समझ लिया है, जैसे स्कूल में हम जब पढ़ाई करते हैं तो तो हमको रिसेस मिलती है, फ्रेश होने के लिए हमको छुट्टी मिलती है थोड़ा। तो हम ब्राह्मण भी समझते हैं ये 3 मिनट हमको क्या मिली है, छुट्टी मिल गई है, हम अपनी वो फ्रेश होने के लिए बाबा को तो याद करने बैठते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने तो बैठते हैं लेकिन ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं। फ्रेश होने के बजाय हम अनेक व्यर्थ संकल्प या माया की उस दुनिया में घूमते हैं जहां पर बहुत सारी बातें हैं और हम वहीं अटक जाते हैं और फिर वो दिव्य नेत्र बंद हो जाता है और ये नेत्र खुल जाते, परंतु जब बाबा की याद में बैठते हैं तो उल्टा हो जाता, ये नेत्र बंद होता है और दिव्य नेत्र वो भी बंद हो जाता। कईयों को जब अनुभव पूछते हैं तो वो झुटका खाने वाले, नींद करने वाले अनुभव क्या सुनाएंगे, मैं तो बहुत बाबा की याद में झूले में झूल रहा था। बात तो राइट ही है, झूला तो बेशक था लेकिन वो झूला किसका था वो तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, कि बाप दादा की गोदी का झूला था या बाप दादा से योग लगाने से सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का झूला था या फिर माया के सुस्ति का, निंद्रा का, अलबेलेपन का, व्यर्थ संकल्पों का झूला था, कौन सा झूला था। तो इसीलिए हम ये जो छोटी छोटी हमारी दिनचर्या की बातें हैं, अमृत वेले से लेकर के रात्रि के सोने तक अपनी दिनचर्या खुद लिखे और उस दिनचर्या के अंदर पहले हम उसका अभ्यास करें। कितना दिन अभ्यास आपको चाहिए करने को, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, 15 दिन चाहिए, 1 मास चाहिए, परंतु हम डट करके पहले अपनी उस दिनचर्या पर हम चलें। उसमें सारी बातें आ जाती है, अमृत वेला योग आता है, हमारी पढ़ाई आती है, मुरली का अध्ययन आता है, हमारी धारणाएं आती हैं, हमारी सेवाएं भी आती हैं। चलो हम बाहर रोज रोज सेवा करने नहीं जा सकते, परंतु बाबा कहते हैं कि आप स्वयं तो एक दिव्य मूर्ति बन करके आपके साथ संग में जो भी आते हैं, जो भी आपको देखते हैं, आप उनकी सेवा तो धारणाओं से कर ही सकते हो, क्योंकि हम बच्चे हैं जिनको बाबा ने ये पाठ पक्का कराया है, पहले करनी करो फिर कथनी करो। पर अभी क्या हो गया है, कथनी हो गई है, कथनी अच्छी तरह हो रही है लेकिन करनी में क्या होता है, जो हम कहते हैं वो हमारे अंदर ही नहीं होता। इसलिए हम सेवा करें स्वयं की पहले, चैरिटी बिगिन्स एट होम। स्वयं की क्या सेवा करनी है धारणा से, तो हमारी कई छोटी छोटी ऐसी चलन है जिससे स्वयं परेशान है, साथी परेशान है, परिवार के सदस्य परेशान है, अड़ोसी पड़ोसी परेशान है, और ये हमारी ऐसी पक्की आदतें हो चुकी है, हम हर छोटी बड़ी बात में फीलिंग के फ्लू में आते हैं। थोड़ा ही किसी ने कह दिया मूड आउट होती है, थोड़ा ही किसी ने कह दिया हमारा मुंह चढ़ जाता है, हम बात नहीं कर पाते, हमारी कहीं इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम उनको अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, फिर हम बड़बड़ाते हैं, फिर वो बड़बड़ाहट हमारी झगड़े में परिवर्तित होती है, क्या क्या नहीं हम करते रहते सारा दिन। कितनी हम लोगों के अंदर वो जो रॉयल चलन जो बाबा हमें सिखलाना चाहते हैं, बाबा कहते तुम सबसे रॉयल पे रॉयल कौन है? हमारा बाबा, तुम उसके बच्चे हो, तो तुम्हारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। लेकिन हम वो रॉयल चलन बना ही नहीं पाते, इसलिए बाबा ने हमें लक्ष्य भी बहुत ऊंचा दिया कि लक्ष्मी नारायण को देखो, वो कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं। आप कहेंगे हमने देखा नहीं, ये तो हम ब्राह्मण बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो सतयुगी आत्माएं हैं, या जो भी बैठी हैं आत्माएं, है कोई त्रेता युग में आने वाली आत्मा? अगर है तो हाथ उठाओ। कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सभी लक्ष्मी नारायण के राज्य वाली आत्माएं हैं। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हमने लक्ष्मी नारायण को देखा ही नहीं, वो कैसे चलते कैसे बोलते। हां, विस्मृति हो चुकी है, परंतु उस विस्मृति को जागृत करना, बाबा ने कहा ना जगाने का वर्ष। हम दूसरों को जगाने के पीछे पड़ेंगे, तपस्या छोड़ेंगे एक बाजू, और जगाने के हम सेवा के खूब प्लान्स बनाएंगे, और फिर सेवाओं के प्लान्स बनाएंगे, और सेवा करते करते हम सोचेंगे इधर सेवा करें, इधर आके तपस्या करें। अभी आप सोचिए, आप इतना अपने को व्यस्त कर लेते हो, जो मन वचन कर्म से थक जाते हो, और फिर आप कहोगे मैं बैठूं अमृत वेले योग करूं, तपस्या वर्ष है, 4 बजे तो योग करते, परंतु 3 बजे करूं तभी कहा जाए तपस्या। स्वाभाविक है, तप किसको कहेंगे? जो रेगुलर रूटीन वर्क है, नियमितम जो करते हैं, उससे कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ अधिक करेंगे तभी तो कहेंगे तप किया। और वही तप आपकी पत रखेगा। तप को उल्टा करो, तप शब्द का उल्टा पत। पत रखना माना हमारी इज्जत रखना, हमें सम्मानित करना, हमें स्वमान में रखना, हमें मान के पात्र बनाना, ये हमारी पत है। परंतु हम क्या करते हैं, वो तप तो हम कर नहीं पाते, परंतु ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हम उसमें भी सफल नहीं होते। तो हम पहले उसका अभ्यास करें। हम छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारे मुख से कितनी रफ बातें निकलती हैं, हम रफ टॉक करते हैं, तू तू मैं करते हैं, इगोइस्ट बन के घूमते हैं, वो बोले तो मैं बोलूं, वो कहे तो मैं करूं। हम अपने आप नहीं करेंगे, हम अपने आप नहीं बोलेंगे, ये क्या है? तो हमने ही अपना ईगो नहीं मारा, और हम बातें करें अशरीरी बनने की, हम कहां से सफल होंगे? इसलिए अपनी दिनचर्या पहले बनाएं, और अपनी दिनचर्या में कहां मेरी कमी है मैं वो देखूं, मेरी चलन में कहां कमी है। कहने को तो हम कह देते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांति धाम की निवासी हूं, शांति के सागर पिता परमात्मा की मैं संतान। कहने को तो हमने बहुत कुछ कह दिया शांति के विषय में, मैं शांति दूत हूं, मैं शांति की दुनिया स्थापन करने आई हूं, अवतरित आत्मा हूं। परंतु हम खुद कितने जल्दी अशांत होते हैं, और कितना जल्दी दूसरों को नेत्रों से, चेहरे से, वाचा से और हमारी एक्टिविटी से हम कितना किसको अशांत करते हैं। कोई कहेंगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों इसको अशांति हो गई। बोलता कौन है? बाबा ने कहा आपकी धारणा बोले कि आप किसकी संतान हो, आपकी चलन कहेगी कि आप ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो। तो कौन बोलेगा? नेत्र बोलते हैं ना, जैसे बाबा के नेत्र बोलते हैं। मैं अव्यक्त बाप दादा की बात बता रही थी आपको, फिर आती हूं उसी बात पर कि जब ये रस्म चेंज हुई और फिर रस्म आई कि सभी को एक निशानी मिलती थी और जिनको वो निशानी मिलती थी वो बाबा के नजरों से गुजरता था, क्यों लगती थी, और हम अपने इंतजार में रहते। हम कभी कभी बैठते हैं बाजू में, वहां देखते हैं कितना उत्साह, कितना उमंग होता है अंदर कि अभी हमारा टर्न आवे और बाप दादा की रूहानी दृष्टि मेरे पर पड़े और मैं नजर से निहाल हो जाऊं। हम सिर्फ कितनी, मैं समझती हूं मुश्किल से 4-5 सेकंड भी हम बाप दादा की दृष्टि नहीं लेते हैं, गुजरते हैं, लेकिन बाप दादा की नजर से 1 सेकंड होती है, नजर से नजर मिलती है और आत्मा को वो करंट पहुंचती है, आत्मा धन्य धन्य अनुभव करती है। और जब यहां से गुजर के मिलते हैं हमको तो हमें बताते हैं, क्या बताएं, बाबा ने मेरे को देखा, बाबा की दृष्टि में ये प्रश्न था, बाबा ने मुझे पूछा। वाइब्रेशन कैच होता है, तुरंत कैच होता है। क्यों? एक ही लक्ष्य, एक ही लात, एक ही तात, बस मुझे बाबा की रूहानी दृष्टि मिले, मैं नजर से निहाल हो जाऊं। उस समय कुछ याद नहीं आता हमको, सिर्फ बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा है अनुभव। तो ये कमाल किसकी? नेत्र की तो है। आज भी हम दादियों दीदियों से हम जब मिलते हैं तो हम चात्रक पक्षी की तरह हम उनकी नैनों से दृष्टि लेना चाहते हैं। अगर उनका ध्यान नहीं होता तो हम उनको हिला करके भी कहते हैं, हमको 1 मिनट 1 सेकंड दृष्टि दो, दृष्टि दो। जैसे हम अर्जी करने पर आ जाते हैं, जैसे हम बहुत प्यासे हैं, तरसते हैं, जैसे स्नेही स्नेही को पाने के लिए तरसता है, प्यासा है, तो हमारी प्यास हमारे नैनों से उनको पहुंचती है और हमारी प्यास को वो बुझाते हैं नैनों से दृष्टि देकर। तो ये दृष्टि, ऐसे दिव्य नेत्र, ऐसा साक्षात्कार कराने वाले नेत्र क्या हम अपने नहीं बना सकते? जब दादियों ने बाप समान अपने नेत्र बनाए, कैसे बनाए? रूहानी स्मृति में रहकर, अशरीरी अवस्था बनाकर, अशरीरी स्थिति में हरेक को देखकर, एक बाप के सभी बच्चे निर्भेद निष्पक्ष वो दृष्टि अपना समझकर, अपनेपन की भावना देते हुए, बाबा दे रहा है, मैं निमित्त हूं, ये सारी धारणाएं अंदर उनके बनी हुई है, अभ्यास है, अभ्यास किया है, एक बार नहीं वो करते ही रहते हैं, आज भी करते रहते हैं, और तब हमें उनकी दृष्टि से ये सुकून मिलता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम हमारे ऐसे नेत्र नहीं बना सकते? जो समझते हम नहीं बना सकते वो हाथ उठाए। असमर्थता क्यों? क्योंकि हम अपनी उस ऊंचे ते ऊंची स्थिति, ऊंचे ते ऊंचा स्वमान, ऊंचे ते ऊंची वो हमारी धारणा, ऊंचे ते ऊंची हमारी चेहरे की वह रूहानी रेखाएं जिसमें हमारा चेहरा हर्षित दिखे। हर्षित का मतलब ये नहीं वो जो स्माइलिंग फेस का चेहरा दिखाते हैं कि ऐसा दांत दिखावे या हमारी या जो होठों की जो रेखाएं हैं वो फैल जावे, नहीं। लेकिन अंदर की स्थिति मेरी संतुष्टता की, अंदर की स्थिति मेरी क्या हो, मुझे बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिल गया, पाना था वो पा लिया, बाकी कुछ नहीं रहा। तो इतना हम सभी जानते हैं, सभी हम रिपीट भी करते हैं इन बातों को, फिर हम क्यों नहीं अपने नेत्रों को ऐसे बनाएं? क्यों नहीं हम अपने चेहरे को हर्षित मुख बनाएं? क्यों नहीं हम संतुष्ट मणि ऐसे बने? जो कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी, उसको कम मिले ज्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पटराणी बनाओ चाहे उसको खटिया मिले खटिया रानी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टेंट में रखो या रूम में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्थिति बनाई उन्होंने, कैसे बनाई? अभ्यास। और ये अभ्यास कैसे पड़ा? बाबा की श्रीमत पर चलने से। ये बाबा की ही तो श्रीमत है, अशरीरी बनो, अपनी चलन से चेहरे से सेवा करो। तो हमें यदि पास होना है तो हमें बाबा के पास आना पड़ेगा, रॉयल चलन के समीप आना पड़ेगा, रॉयल चरित्रों के समीप आना होगा, और जो भी माया के विघ्न आते हैं उनको पास करना होगा। पर हम उल्टा करते हैं, जैसे गीता में भगवान उवाच, हे अर्जुन मैं जप तप दान तीर्थ यज्ञ हवन होम मैं किसी से नहीं मिलता हूं, मेरा परिचय मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। और हम सभी ने भक्ति मार्ग में क्या किया, जिस बात पर चलने की मना की गई हम उसी बात पर चलते रहे, और फिर हम रड़ियां मारते रहे भगवान नहीं मिला भगवान नहीं मिला, और फिर आखिर भगवान को ही दया आई अपने बच्चों पर, तो किसने हमको अपना बनाया? हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमको ढूंढा? हाँ, क्या जवाब है? बाबा ने ढूंढा, जो कहते हैं वो हाथ उठाए। देखो सभी कहते बाबा ने हमको ढूंढा, हम तो ढूंढ ढूंढ करके बाबा कहते टिप्पर भी घस चुके थे। तो बाबा ने ढूंढा, तो अभी भी बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। तो मुरली को बार बार पढ़ो, विचार सागर मंथन करो, आपस में भी यही बातें करें। और ये तपस्या वर्ष, बाबा ने जैसे कहा तपस्या वर्ष मनाएं, ये सब बातों को हम विदाई दें, तभी जब विदाई देंगे तब समाप्ति होगी, जब समाप्ति होगी तब सच्ची सच्ची नई दुनिया की वधाई हो वधाई हो बधाई हो कह सकेंगे। तब तक हमारा कहना क्या होगा? रियल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसीलिए सोच समझकर बधाई दें। ऐसी बधाई बोलने के लिए खूब अंदर में धारणाओं का वो जोश भरें, वो प्रैक्टिकल धारणा भरें कि हमने विदाई दे दी और हमने समाप्त किया है, तो समाप्ति वर्ष मनाओ। तो आप सभी को नए वर्ष की, पुरानी दुनिया की रस्म अनुसार आने वाले नए वर्ष की जो आज से शुरू हो रहा है, आपके नए शुभ संकल्प जो बाप दादा ने दिया है, उस संकल्प को आप करें, उसका अभ्यास करें और उसमें आप पास हो जाएं। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। स्वीकार करें। ओम शांति।